नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, अध्यात्म का सही मतलब क्या है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है, पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन। इसका शीर्षक है अध्यात्म के सही मर्म को समझें, जो 1971 में अखंड ज्योति पत्रिका में छपा था। तो चलिए इसी उद्बोधन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पूज्य गुरुदेव क्या कहना चाह रहे थे।
जी बिल्कुल। और देखिए, हमारा इरादा यहाँ ये है कि हम सिर्फ बाहरी कर्मकांड या चमत्कारों की बातें ना करें, बल्कि अध्यात्म के उस असली गहरे पहलू को समझें जिस पर पूज्य गुरुदेव ने हमेशा जोर दिया है, मतलब व्यक्तित्व का निर्माण और समाज का कल्याण।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ना एक बड़ी पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि समाज में जो दिक्कतें हैं, चोरी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, ये सब समस्याएं सिर्फ पुलिस बढ़ाने या सिर्फ कानून बनाने से हल नहीं होंगी।
सही बात है,
क्योंकि भाई अगर हर इंसान का अपना ईमान ही ठीक ना हो तो फिर कितने सिपाही पहरा देंगे। वो मानते हैं कि असली बदलाव तो तब आएगा जब इंसान ये समझेगा, ये महसूस करेगा कि मेरे कर्मों का फल तो मिलना ही है और ऊपर वाला सब देख रहा है। और यहीं से वो कहते हैं अध्यात्म का रोल शुरू होता है।
बिल्कुल, यही समझ, यही एहसास अध्यात्म का आधार है। लेकिन यहाँ पर ना पूज्य गुरुदेव एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि भाई देखो, अध्यात्म कोई चमत्कार दिखाना नहीं है, कोई जादू टोना, कोई सिद्धि पा लेना, ये सब नहीं है।
अच्छा,
वो कहते हैं ये सब तो खेल तमाशे हो सकते हैं शायद। असली अध्यात्म है व्यक्तित्व का परिष्कार, मतलब अपने गुण, अपना कर्म, अपना स्वभाव, इनको लगातार बेहतर बनाना, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको हटाना। उनका तो यहां तक कहना था कि भाई पूजा पाठ शायद थोड़ा कम भी कर दो, पर अगर अपने व्यक्तित्व को सुधार लिया, अपने अंदर बदलाव ले आए, तो जिसे दुनिया चमत्कार कहती है वो तो फिर अपने आप जीवन में दिखने लगेगा।
इसी बात को और साफ करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने महात्मा गांधी का उदाहरण भी दिया है।
जी,
वो बताते हैं कि गांधी जी दिन में मुश्किल से आधा घंटा प्रार्थना करते थे।
जी,
उन्होंने कोई खास योग साधना नहीं की, कोई जटिल क्रियाएं जैसे चक्रभेदन या कुंडलिनी जगाना ऐसा कुछ नहीं किया था।
जी,
लेकिन फिर भी उनके जीवन का प्रभाव देखिए।
जी,
कितना जबरदस्त था।
क्यों?
हाँ, क्यों था? क्योंकि गुरुदेव के अनुसार उन्होंने अपने व्यक्तित्व का परिष्कार किया था, सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में उतार लिया था। उनके एक इशारे पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता था, साधारण से दिखने वाले लोग भी महान काम कर जाते थे। ये बात सोचने वाली है, है ना? ये जो पारंपरिक धारणाएं हैं योग साधना की, उनको थोड़ा चैलेंज करती है।
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वाकई पारंपरिक सोच पर एक नया दृष्टिकोण है। तो मतलब साफ है, पूज्य गुरुदेव के हिसाब से अध्यात्म कोई पूजा घर या ध्यान की कोठरी में बंद रहने वाली चीज नहीं है, ये तो हमारे रोज के जीवन में, हमारे बर्ताव में उतरनी चाहिए।
अच्छा, तो इसमें क्या क्या आता है, मतलब व्यावहारिक रूप क्या है इसका?
देखिए, इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे दूसरों के साथ प्रेम से, मिठास से बात करना, व्यवहार करना, यहाँ तक कि जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनके लिए भी मन में बुरी भावना न रखना। कोशिश करना कि वो भी मित्र बन जाएं, अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पहचान कर मेहनत करना, जैसे किसान जमीन जोतता है ना फसल उगाने के लिए, वैसी मेहनत। और एक बहुत जरूरी बात, अपने लिए कठोर होना, मतलब आत्मा अनुशासन रखना, अपने ऊपर संयम रखना और दूसरों के लिए उदार और मुलायम होना। और साथ ही समाज में अच्छे ऊंचे विचारों को फैलाना, ये भी आध्यात्मिक जीवन का ही एक हिस्सा है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक बगीचा है, तो सिर्फ पानी डालने या पूजा करने से पौधे अच्छे नहीं होंगे, खरपतवार भी निकालनी पड़ेगी, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, असल मेहनत तो वही है।
जी बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव भविष्य को लेकर बहुत उम्मीद रखते थे। वो एक नए युग की कल्पना करते थे जहां अन्याय नहीं होगा, अनीति नहीं होगी, बुरी रीतियां खत्म हो जाएंगी। और वो कहते थे कि उस नए युग में ना अध्यात्म की परिभाषा भी बदल जाएगी।
अच्छा,
कैसे बदलेगी? तब अध्यात्म का मतलब होगा दुनिया की चीजों, धन दौलत के लिए एक हद तक संतोष रखना, बहुत ज्यादा लालच नहीं, और अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो समय है, अपना जो धन है, उसको समाज की भलाई में लगाना, लोक मंगल के लिए। क्योंकि अध्यात्मवादी मांगने वाला नहीं होता, वो देने वाला होता है। वो समाज से लेता कम है, देता ज्यादा है।
और इस देने की भावना के पीछे जो शक्ति है वो है निस्वार्थ प्रेम। पूज्य गुरुदेव अपने और अपने अनुयायियों के बीच इसी गहरे निस्वार्थ प्रेम की बात करते थे। वो इसे जन्मों का रिश्ता कहते थे। ये कोई खून का रिश्ता नहीं बल्कि विचारों का, आदर्शों का, भावनाओं का रिश्ता है।
हाँ।
वो ये भी बताते थे कि कैसे वो अपने विचार, अपने अनुदान, अपने मानने वालों तक पहुंचाते हैं, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि वाणी के और भी सूक्ष्म स्तरों से। जैसे वैखरी तो हम सुनते हैं, फिर मध्यमा है, परा है, पश्यंती है, ये विचार और आत्मा के स्तर की वाणी है। यहाँ तक कि जब अनुयायी सो रहे होते तब भी ये मार्गदर्शन चलता रहता है ताकि वो आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ते रहें। ये कितना गहरा आत्मिक जुड़ाव दिखाता है।
बिल्कुल। और अंत में पूज्य गुरुदेव सभी से एक अपील करते हैं, एक आह्वान कि समाज को बेहतर बनाने के लिए, अच्छाई को लाने के लिए सब अपना योगदान दें, उनके साथ कदम से कदम मिलाएं, चाहे कुछ कदम ही सही। वो कहते थे कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे उस समय के हिसाब से उन्होंने कहा 10 पैसा, या फिर अपना थोड़ा सा समय इस अच्छे काम के लिए दें।
जी।
ये सिर्फ पैसे या समय की बात नहीं है, ये एक प्रतीक है साथ चलने का, सहयोग करने का, उस बड़े लक्ष्य से जुड़ने का।
तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म बहुत ही प्रैक्टिकल है, जीवन बदलने वाला रास्ता है। ये कोई रहस्यमयी, डरावनी या उलझी हुई चीज नहीं है। ये तो खुद को सुधारने, अच्छा व्यवहार करने, समाज की सेवा करने और निस्वार्थ प्रेम को जीने और बांटने का एक तरीका है, एक विज्ञान है। और इससे व्यक्ति का भी भला होता है और पूरे समाज का भी।
बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार हम छोड़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि उनके पास देने के लिए सिर्फ एक ही खजाना है, निस्वार्थ प्रेम। आज की दुनिया में जहां हर चीज में लेन देन है, हिसाब किताब है, इस निस्वार्थ प्रेम को अपने जीवन में जगाने का और इसे दूसरों तक पहुंचाने का क्या मतलब हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।